आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति से ओतप्रोत कुछ भाव को व्याख्या कर रहे हैं। भाव ये स्तोत्र बड़ा भाव भरा स्तोत्र है, भक्ति भाव से ओतप्रोत है। आदिगुरु शंकराचार्य जी शिव के सामने भक्ति भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। अभ्यास के लिए 45वां श्लोक। छंदसा की शिखान्वितेर द्विजवर ही संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिनि सुधा सारही फलेर दीपिते चेता पक्षी शिखा मणे त्यज वृथा संचार मन्यैरलं नित्यं शंकर पाद पद्म युगली नीडे विहारं कुरु आकिरणे नखराज कांति विभवई उद्यत सुधा वैभवैर आधोते पिच पद्मराग ललिते हंस ब्रजैराश्रिते नित्यं भक्ति बधु गणेश्च रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहं सगिरिजा नाथांग्रिसौधान्तरे संबोध्यान वसंत संगिनिरिदा रामे अगजीर्णच्छदा स्रस्ता भक्तिलता छटा बिलसिता पुण्य प्रवालश्रिता दीप्यन्ते गुणकोरका जपवच पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानंद सुधा मरंदलहरी संवित फलाभ्युन्नति नित्यानंदरसालयं सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयं स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुसरित सद्वासना विस्तृतं संबोध्यान सरोवरं ब्रजमनो हंसावतंसस्थिरं किं क्षुद्राश्रय पल्लव भ्रमण सन् जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदां भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुवेत्य भक्तिललिता शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता छंदसा की शिखान्वितै द्विजवरै संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिनि सुधा सारैः फलैर् दीपिते चेता पक्षी शिखा मणे त्यज वृथा संचार मन्यैरलं नित्यं शंकर पाद पद्म युगली नीडे विहारं कुरु। भगवान शंकराचार्य जी वेद रूपी वृक्ष, वेद को एक वृक्ष के रूप में परिकल्पित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और मन रूपी जीव को समझा रहे हैं। यह मन जीव का प्रतीक है, क्योंकि मन के माध्यम से ही जीव अपना अस्तित्व व्यक्त करता है। या यूं समझ लो कि उस मन को समझा रहे हैं कि हे मन पक्षी, चेता पक्षी शिखा मणे, संबोधन है, हे चेता, शिखा मणे, क्योंकि मन को कहीं कहीं राजहंस भी कहा है, मानस राजहंस। और लोक भाषा में भी मन को पक्षी की उपमा देते हैं, मन पक्षी उड़ जाए कहते हैं ना। शरीर से जब जीवात्मा का निकलना होता है तो उस समय मन को जीवात्मा के प्रतीक मानकर कहते हैं कि मन पक्षी उड़ जाए। और कहीं कहीं हंसा उड़ गया बोलते हैं, जीव निकल गया तो हंसा उड़ गया, निकल गया, ये भी शब्द। और हम सभी पक्षी का ही प्रतीक है, पक्षी जाति का है। हे चेता पक्षी ही, शिखा मणे माने श्रेष्ठ पक्षी, शिखा माने सिर और मणि माने मड़, मणि हो गया रत्न, सिर में धारण किया हुआ मणि, सर्वोत्कृष्ट चूड़ा मणि बलई कृत वासुकी, जिन भगवान शिव ने चूड़ा मणि अपने मस्तक में बलई कृत वासुकी नाग को बढ़िया गजरे के रूप में पहन रखा है, जिन्होंने चूड़ा मणि कृत बलई कृत वासुकी, ऐसे आचार्यों की स्तुति गान में मंगलाचरण में श्लोक आता है। तो बोले हे पक्षी, मन पक्षी, तू बड़ा इधर उधर भटकता रहता है। एक सामान्य नियम है कि पक्षी सगभर पेड़ों को ही पसंद करते हैं, वृक्षों को पसंद करते हैं, जंगल को पसंद करते हैं, जंगलों में भी उस वृक्ष को पसंद करते हैं जिसमें खूब फल हो, खूब घने पत्ते हो, फूल हो, बढ़िया छाएदार हो, बड़े बड़े पेड़ हो। तो प्राय करके पक्षी ऐसे वृक्षों को पसंद करते हैं, ऐसे वृक्षों में रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कौवा जाती है, कबूतर की बात छोड़ दो आप, कौवे की बात करते हैं, प्राय हमने देखा है कौवा अपने जो घोंसला बनाता है ना, कभी भी किसी के घरों में घोंसला बनाता हुआ हमने नहीं देखा है। वो छोटा भी होगा तो कोई ना कोई पेड़ चाहिए, आसपास में ऊंचे ऊंचे इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग खड़े हैं, कबूतर तो उस बिल्डिंगों के कहीं ना कहीं छिद्र आदि मिल जाए, कहीं मिले, वो वहीं रहते हैं, वहीं घोंसला बना लेंगे। लेकिन कौवे को हमने देखा उस बिल्डिंगों में कहीं भी घोंसला नहीं बनाता है, उसके बगल में छोटा एक पेड़ भी मिल जाएगा ना उसी में घोंसला बनाएगा वृक्ष में, और घरों में नहीं बैठता कौवा। तो घरों में क्यों नहीं बैठता? तो कौवा नहीं बैठता, हम तो मनुष्य है ना, इसीलिए हम बैठते हैं। तो पक्षी की अपनी अपनी विशेषता है, जाति है। और ये शास्त्र में वर्णन किया हुआ है, जितनी अच्छी जाति के पक्षी होती है ना, वो उतने ही घनदार वृक्षों में अपना आश्रय बनाते हैं। और जो जितने घटिया क्वालिटी के पक्षी होते हैं वो उतने ही उजाड़ वृक्ष में घोंसला बनाते हैं। गृद्ध कंकोपसे विनः। ये देखो पुराण में श्लोक आता है, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य बाधता, श्मशाने जायते वृक्ष गृद्ध कंकोपसे विनः। कोई व्यक्ति मनुष्य होकर गुरु को वो सीधे तू आदि शब्दों से संबोधन करता है, अपमान करता है, इसका अर्थ है तो गुरु का तिरस्कार करता है, तो क्या समझता है इत्यादि शब्द। गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य बाधता, और कोई ब्राह्मण अर्थात कोई विद्वान को वाद विवाद के द्वारा, वाद से जीतो तो ठीक है, विवाद से जीतना चाहो तुम जीत सकते हो, विवाद से विद्वानों को हरा नहीं सकते वाद से, लेकिन विवाद से तो बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं। वाद जल्प और वितंडा ये तीन साधन हैं। व्यक्ति जब जल्प और वितंडा में चला जाता है ना, तो बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं माना है वितंडा के द्वारा किसी को परास्त करना हो, और वितंडा का योग प्रयोग करके जो कोई जीतता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। खंडन करना उसका लक्ष्य है, जीतना हर हालत में उसका लक्ष्य है, उसको शास्त्र सम्मत कोई तर्क और युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और शंकराचार्य जी कहते हैं दुष्तर्कात सुविरम्यता, मुमुक्षुओं को चाहिए कि दुष्तर्क कभी न करे, वो दुष्तर्क का नाम ही है वितंडा। श्रुति मत तर्को अनुसंधिनी संदीयता, शास्त्र सम्मत जो तर्क है वह उसका नाम है वाद, और शास्त्र विपरीत कुतर्क का नाम है वितंडा। तो वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। तो गुरुम हम कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य वादत, ऐसा करके जो जीता हुआ है गुरु को भी जीते, विद्वानों को भी जीते, सबको जीता है, तो उसके मरने के बाद ऐसा व्यक्ति मशान घाट में वृक्ष बनकर पैदा होता है। पहले जंगम था, अब स्थावर जीव होगा वो, समझे नहीं। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही एक विशेषता है कि मनुष्य से वह पशु पक्षी भी हो सकता है, और मनुष्यों से वह वृक्ष लता भी हो सकता है जन्मांतर में। तो आजकल कुछ ऐसे धर्म हमारे मानव समाज में प्रचारित हो रहे हैं जो ये कहने लग गए हैं कि मनुष्य मरकर पैदा होगा तो मनुष्य के रूप में, अन्य योनियों में मनुष्य जा ही नहीं सकता। और कहते कहते यहां तक कि हमने सुना है, यहां तक भी कहने लग गए हैं मनुष्यों में भी पुरुष होकर पैदा हुआ है, मर के फिर जन्मेगा तो पुरुष योनि में ही जन्मेगा, स्त्री योनियों में नहीं जन्म सकता, नहीं पैदा हो सकता है। और स्त्री होकर कोई पैदा हुई है और वो मरेगी, और यदि दोबारे उसको जन्म मिलना होगा तो वो स्त्री शरीर में ही उसको दोबारे जन्म मिल सकता है, पुरुष शरीर में नहीं मिल सकता। ऐसे ऐसे पाखंड का प्रचार भी समाज में करने लग गए हैं, उनको शास्त्र का मर्म कोई मतलब नहीं, सनातन धर्म का कोई मतलब ही नहीं, रहस्य उनको मालूम नहीं। जो सनातन धर्म जिन शास्त्रों पर टिका हुआ है वे शास्त्र जीवात्मा के लिए यह कहता है कि योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। कठोपनिषद की श्रुति है ये, यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं। और क्या यमराज से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए ये मूर्ख लोग और ये कहने लग गए हैं? यमराज तो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य हैं, ऐसे ज्ञानी तो यमराज, वो नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, उपनिषद विद्या का। और वो समझा रहे हैं। और नचिकेता ने प्रश्न किया यही हाँ, कि कोई कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता नहीं, और कोई कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। ये आत्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मरने के साथ साथ ही आत्मा बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि अब मरने के बाद भी आत्मा रहता है, ये नचिकेता का प्रश्न है। हाँ, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यो यदिष्यति तद् वद। जो धर्म से भी परे है, दूसरा प्रश्न, जो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, जो कर्म और कर्म फल से परे है, कृता कृतात्, ऐसा कोई तत्व आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए इत्यादि। तो नचिकेता ने जब आत्मा के बारे में इस तरह प्रश्न किया कि लोगों में चर्चा मैंने सुनी है कि मरने के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद भी रहता है, तो सही में आत्मा मरने के बाद भी रहता है कि नहीं, या मरने के साथ ही समाप्त होता है? तब यमराज ने कहा कि बेटा, वास्तव में मरना और जीना इस प्रश्न ही आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तब इस तरह मरने के बाद रहना और न रहने का प्रश्न है कि निश्चित है कि आत्मा कभी भी नाश होता ही नहीं है, चाहे शरीर जन्मे चाहे शरीर मरे, शरीर के मृत्यु से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी तरह शरीर के जन्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर के जन्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है जन्म में हाँ? और शरीर के मरने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है हाँ? तो इसी तरह आत्मा तो नित्य है, वो धर्म से परे है, अधर्म से परे इत्यादि वहां उपदेश किया है। तो अभिप्राय यह है कि कुछ लोग, इस रहस्य को न जानने वाले लोग कह देते हैं कि स्त्री शरीर में रह हुआ जो आत्मा है, मरने के बाद फिर उसका जन्म होगा तो स्त्री शरीर में ही होगा, दूसरे किसी शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा यदि फिर जन्मेगा तो मनुष्य ही होगा, दूसरा किसी शरीर में वह पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कहते हैं कि एक शरीर में, जिस शरीर में, जिस ढांचे का बन गया वो आत्मा, वही ढांचे का शरीर मिलेगा तो जन्म होगा, अन्यथा नहीं। कोई ईंट है क्या आत्मा है? गीली मिट्टी है? नहीं, सूखी मिट्टी है क्या? ईंट है क्या? जैसे एक सांचे में मिट्टी को, गीली मिट्टी को डालो और वह सूखे और उसको पके, तो जो सेब बन गया उस ईंट का, वैसा ही सांचा मिले तो फिट बैठेगा, और वैसा सांचा नहीं मिला तो वो ईंट वहां फिट बैठेगा है? स्क्वायर का जो ईंट होगा, वह चार कोने वाला जो ईंट बना होगा, वो चार कोने के सांचे में ढालकर बनाया गया है, और चार कोने का सांचा ही मिलेगा तो वो ईंट उसमें फिट बैठेगा। कराची सांचा तीन कोने का होगा तो वो ईंट उसमें फिट बैठेगा? बोलो, नहीं बैठेगा ना। और दो कोने का होगा या लंबा होगा तो फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। कहीं वो सांचा गोल होगा तो वो ईंट फिट बैठेगा? तो ऐसी कल्पना करके मनुष्यों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि आत्मा एक बार जिस शरीर के ढांचे में ढल गया है, मरने के बाद वैसा ही शरीर में तो पैदा हो सकता है, उससे अन्य शरीर में आत्मा पैदा नहीं हो सकता। इतने भ्रमित कर दिए, जबकि हमारा वैदिक सनातन धर्म का कहना यह है, आत्मा वह सूखी ईंट की तरह नहीं है कि एक ढांचे में ढल गया है। आत्मा तो उसकी तरह है कि एक हवा की तरह है, एक आकाश की तरह है, हमेशा उपमा दी गई है। मान लो एक आजकल अलग अलग आकार के गुब्बारे होते हैं ना, मनुष्य के आकार का गुब्बारा बना देते हैं, पक्षी के आकार के गुब्बारे बना देते हैं, प्लेन के आकार के गुब्बारे बना देते हैं। उस गुब्बारे में जो हवा भर दी गई है, प्लेन के आकार का जो गुब्बारे के हवा है, उस हवा को यदि निकालकर घड़े के आकार के गुब्बारे में भरना चाहो, भर सकते हो कि नहीं? कैसे भरोगे? वो हवा का तो प्लेन के आकार का बन गया वो तो आकार, तो फिर घड़े के आकार में कैसे घुसेगा? वो प्लेन कहीं घड़े के अंदर घुस सकता है ने? अरे बाबा, कोई सूखी ईंट थोड़ी है, वो तो हवा है। हवा को तो जैसा आकार दोगे वैसे ही बन जाएगा, और यदि कोई गुब्बारा नहीं मिला तो वह निराकार आकाश में विचरण करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे पानी, चार कोने वाला बर्तन में रखोगे तो पानी चार कोने का ही शेप होगा, और तीन कोने वाले बर्तन में रखोगे तो उसी शेप में ढल जाएगा। वो ये नहीं कहेगा वो पानी, मैं पहले चार कोने के शेप में था, अभी चार कोने के शेप वाला बर्तन लाओ तो मैं उसमें रहूंगा, ये तीन कोने वाले में मैं फिट नहीं हो सकता। पानी क्या ऐसा बोलता है क्या है? एक मामूली सा पानी में वो चीज नहीं है। तुमने कैसे कल्पना कर ली कि आत्मा भी शरीर के आकार के शेप में वो ढल गया, अब वही शेप का शरीर मिला तो जन्मेगा, नहीं तो जन्मेगा ही नहीं? ये कहां से कल्पना कर ली तुमने भाई है? ये शास्त्र के मर्म को ठीक से गुरुमुख से परंपरा से जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है ऐसे उटपटांग व्याख्या करते हैं। हमने सुना है लोग ऐसे ऐसे व्याख्या करने वाले भी आजकल धर्म के नाम से मनुष्य समाज में खूब प्रचारित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, हम सुनते हैं, लेकिन ये मूर्खता उपहास के अलावा कुछ नहीं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि मनुष्य होकर पेड़ पौधे भी होते हैं, तमाम उदाहरण है। कुबेर के पुत्र नलकुबर थे, क्या थे वो लोग? मनुष्य थे कि देवता थे? देवकोटि के कुबेर के पुत्र, कुबेर खुद देवकोटि का है, तो कुबेर का पुत्र देवकोटि के थे नलकुबर, और उनको श्राप मिल गया। और क्या श्राप मिला है? क्या हुए वो लोग? वृक्ष हो गए है? वृक्ष हो गए, जो मनुष्य से वृक्ष हो गए, कोई आपत्ति हुई उनको है? कुछ नहीं। राजा निर्ग था, शास्त्र में प्रमाण है कि नहीं बोलो? राजा निर्ग दान किया हुआ गाय को, एक बार दान किए हुए गाय को भूल बस फिर दोबारे दान कर दिया, सावधानी नहीं रखा उसने। उस असावधानी के परिणाम क्या हुआ? श्राप दे दिया ब्राह्मण ने कि तू राजा होकर भी सावधानी नहीं रखता है और दाता बनता है, और जिस गाय को तूने कल किसी और ब्राह्मण को दान दिया था वही गाय को फिर आज मुझे दान दे रहा है, हैं? तो इस राज पद में मनुष्य योनि में बैठने लायक नहीं है, जा गिरगिट हो जाओ। श्राप दे दिया, और कहां राजा निर्ग और कहां गिरगिट होना पड़ा है? तो हो गया कि नहीं बोलो? कोई आपत्ति? प्रमाण हजार हैं। राजा भरत आसक्ति के चलते मरने के बाद फिर हिरण्य योनि में पैदा होना पड़ा, कोई आपत्ति? हजारों प्रमाण, लाखों प्रमाण हैं तमाम शास्त्रों में, लेकिन इन शास्त्रों का अध्ययन मनन करें तब फिर वो ठीक से व्याख्या करें। इनका अध्ययन मनन तो करते नहीं है, ऊट पटांग व्याख्या कर देते हैं। शिव पुराण में ऐसी ऐसी कथा है, भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि इस जंगल में जो आएगा सब स्त्री हो जाएंगे, क्या आपत्ति है बोलो? मारना ही नहीं पड़ा, जीते जी योनि परिवर्तन हो गया। शिव पुराण की कथा नहीं सुनी आप लोगों ने? है? उस वन की व्यवस्था यह थी कि वहां शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे, कुछ लोग वहां पहुंच गए और उनकी क्रीड़ा को, उसकी लीला को देखकर पार्वती माने वो लोग हंसने लग गए, भगवान शिव की उपासना करने, उपहास करने लगे, तो पार्वती लज्जित हो गई, तो गुस्सा आ गया उनको। तो शंकर ने कहा कि अरे तू चिंता न कर, इस जंगल में आज के बाद कोई पुरुष होगा ही नहीं, सब स्त्री होंगे, जो भी आएगा है श्राप दे दिया। अब एक राजा घूमते घूमते घोड़ा चढ़ के गया, उसको पता नहीं था, देवी भागवत की कथा है, तुम लोगों ने सुना होगा, देवी भागवत में ये कथा आती है। तो चढ़ के गया तो घोड़ा भी घोड़ी हो गई और राजा भी रानी हो गई। हाँ, उसको पता ही नहीं, ले जी तो क्या आपत्ति वाला, आत्मा के लिए कोई अड़चन नहीं है, आत्मा कोई मैटेरियल पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ नहीं, हाँ, कि एक शेप का बन गया तो वो हमेशा उसी शेप में रहेगा, कुछ भी बन सकता है। तो शमशाने जायते वृक्ष, पुनर्जन्म के बाद दूसरे जन्म में वो वृक्ष योनि में पैदा होना पड़ता है, किसको, जो गुरु का अपमान करता है ऐसे मनुष्यों को दूसरे जन्म में मशान घाट, मशान घाट के वृक्ष में और अन्य वृक्ष में क्या अंतर है महाराज, तो पुराण में व्याख्या की गई है, क्योंकि मशान घाट में गिद्ध और काग ही रहते हैं, समझे कि नहीं, वहां कोई कबूतर थोड़ी रहेंगे, गिद्ध और काग ही रहेंगे, गृद्ध कंकोपस्य विना। अब ये किसी अच्छे पक्षियों का आश्रय देने वाला वृक्ष हो सका, वो नहीं हुआ, तो प्राय करके वृक्ष ऐसे वृक्ष खोजते हैं पक्षियां जहां सब कुछ विद्यमान हो, बढ़िया पत्ते हों, घने पत्ते हों, और जहां फूल हो, फल हो, बढ़िया शाखाएं हों, अनेक शाखाएं हों। तुम लोगों ने कहीं बिजली के पोल में किसी पक्षी ने घोंसला लगाया हुआ देखा है, स्ट्रीट लाइट के पोल में वृक्ष ही खोजते वो लोग। तो मन को एक पक्षी की उपमा दिया शंकराचार्य जी ने यहां, और कहा कि हे मन पक्षी, तुमको रहने के लिए वृक्ष चाहिए ना, बोले हाँ, वृक्ष के अलावा हम तो और जगह तो रहते नहीं, तो एक काम करना भाई, एक बहुत बढ़िया वृक्ष है, तुम उसी वृक्ष का आश्रय लेना। कौन सा वृक्ष भाई, यहां वो बता रहे हैं, छंदसाखी, वेद को यहां छंद कहा, साखी माने शाखा वाला, साखी जैसे देह अंग और अंगी है ना, शरीर को क्या बोलते हैं, अंगी बोलते हैं, अंग नहीं बोलते, हाथ को क्या बोलेंगे, अंग, सिर को क्या बोलेंगे, अंग, पांव को क्या बोलेंगे, अंग, और इस सब को मिलाकर क्या बोलेंगे, शरीर को अंगी। इसी तरह शाखा जिनमें विद्यमान हो, सभी शाखा जिसमें विद्यमान हो, अनेक शाखाएं जिसमें रहते हो, उसको क्या बोलेंगे, साखी, शाखा वाला, अंग वाला को अंगी, इसी तरह शाखा वाला को, वाले को साखी। साखी क्या है, तो बोले छंद, छंद माने वेद। देखो गीता में पूरा संसार को वृक्ष के रूप में, गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गीता के माने संसार को एक वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, ऊर्ध्वमूल, अधःशाखा, अश्वत्थम नाम भी दे दिया, अश्वत्थम पिपल, अश्वत्थम पिपलम, प्राहुरव्ययम, छंदांसी यस्य पर्णानि, तो वहां वेद को पत्ता कहा, और यहां शंकराचार्य जी वेद को ही एक वृक्ष के रूप में उपमित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और भागवत के एकादश स्कंद में पूरे शरीर को एक वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, एकायनो असौ द्विफल त्रिमूल चतुरस पंचविद षडात्मा सप्तत्वगस्त विटप नवाक्ष दशक्षदि द्विखग इहादि वृक्ष। एक अनादि वृक्ष ऐसा वृक्ष खड़ा हुआ है, आदि वृक्ष, अनादि नहीं, आदि वृक्ष, शरीर अनादि नहीं है, शरीर आदि है, संसार अनादि है, शरीर आदि है। भागवत एकादश स्कंद में शरीर को ये आदि वृक्ष है, यानी पैदा हुआ हुआ एक वृक्ष है। एक है ना, ये एक आश्रय वाला है, द्विफला त्रिमूला, तीन मूल वाला है, दो फल वाला है, है? और त्रिमूला तीन मूल, चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगस्तपिटप नवाक्ष, नव छिद्र वाला नवाक्ष, दशच्छदि दस इंद्रियां वाला, सात धातु वाला, अष्टधा प्रकृति वाला ये शरीर, ये शरीर वृक्ष है। और इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, द्वि खग यादि वृक्ष, जीव पक्षी और ईश्वर पक्षी, ये दो पक्षी इसमें, इस शरीर वृक्ष में रहते हैं। और वहां एकादश स्कंद में शरीर को ही वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। और गीता के 15वें अध्याय में पूरा संसार को वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। ऊर्ध्वमूल मदसा कामस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादृ न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। यहां तक इस संसार वृक्ष का वर्णन है। लेकिन ये वृक्ष बचाए रखने के लिए नहीं है, ये वृक्ष सिंचन करके बचाए रखने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा ये वृक्ष अनादि है, ये पैदा हो गया और इसको काटना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मतलब साधारण हथियार से कटेगा नहीं, तो असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा, सबसे पहले संसार वृक्ष को तुम असंगता शस्त्र द्वारा पूरी तरह काटो, फिर उसके बाद तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम। पहले तुम संसार वृक्ष को भी तुम बचाए रखना चाहो और फिर तत्पद का लक्ष्यार्थ भी मुझे प्राप्त हो ये चाहो, तो या तो तुम संसार वृक्ष में भटको रहो, तत्पद के प्राप्ति की तुम आशा छोड़ दो, और या फिर संसार वृक्ष का उजाड़ करो, तब जाकर तुम्हें तत्पद की प्राप्ति होगी। ये गीता का ये अभिप्राय है 15वें अध्याय में इन श्लोकों का। दोनों तुम्हें एक साथ नहीं मिलने वाला है। संसार भी पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही मुझे प्राप्त बना रहे, संसार भोग का पूरा आनंद भी मैं लेता रहूं और ब्रह्मानंद भी मैं लेता रहूं, ये ठीक इसी तरह विपरीत है जैसे किसी से गुस्से में आकर गाल फुलाकर भी बैठे रहें और उसके द्वारा जोर जोर से हांस भी ले, तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। हंसोगे तो गाल फुलाना नहीं बनेगा, गाल फुलाओगे तो हंसना नहीं बनेगा। तुलसीदास जी ने अपने मानस में ये उपमा दी है, दोनों एक साथ नहीं बनेगा। इसी तरह संसार वृक्ष नष्ट होगा तभी तत्पद का लक्ष्यार्थ तुम्हें प्राप्त होगा, और तत्पद का लक्ष्यार्थ प्राप्त हो तो फिर संसार वृक्ष निष्प्रयोजन है, वो अपने आप ही सूखने लग जाएगा। वो संसार वृक्ष अपने आप ही सूखने लग जाएगा, क्योंकि संसार वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा? जब तक तुम मैं मेरा कहते रहोगे तो संसार वृक्ष हरा भरा बना रहेगा, और जब मैं मेरा समाप्त हो जाएगा तो संसार वृक्ष अपने आप ही उजाड़ जाएगा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ तथा पदम तत्परिमार्गितव्य। अभिप्राय क्या है कि शरीर को भी कहीं वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, पूरे संसार को कहीं वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, तो शंकराचार्य जी यहां पूरे वेद को ही एक वृक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और मन को पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मन को कहीं बांदर के रूप में भी प्रस्तुत किया था वो, हाँ ये तो समझने के लिए है, कहीं बंदर के रूप में मन को प्रस्तुत करते हैं और कहीं मन उसको चोरों के रूप में मन को प्रस्तुत किया है। तस्कराणाम पतये नमो नमः, मना तस्करा, मन रूपी जो चोर है ना, हाँ इसको आप दंड दो महाराज, ऐसे भी स्तुति की है। यहां मन को समझा रहे हैं, छंद साखी शिखान्वित, शिख माने उपनिषद, छंद पूरा का पूरा पेड़ है तो उपनिषद उस पेड़ के एक शाखा है। मन को ये कह रहे हैं कि तुम पूरे पेड़ में तो नहीं बैठ सकते हो, पक्षी एक पक्षी पूरे पेड़ में तो नहीं बैठ सकता है, पेड़ में यदि बैठेगा भी तो कुछ ही एक शाखा में जाकर बैठेगा, है ना, किसी एक टहनी में जाकर बैठेगा, पूरे पेड़ को तो कवर नहीं करेगा भाई, कोई जटायु होगा तो करेगा, बड़ा जटायु होगा है, नहीं तो पक्षी साधारण पक्षी तो पूरे पेड़ में तो बैठेगा नहीं, किसी एक शाखा में। तो कह रहे हैं कि हे चेता, चेता पक्षी शिखा मणे, सर्वश्रेष्ठ पक्षी रूपी मन, तुम्हें तुम्हारे लिए रहने के लिए एक बहुत बढ़िया पेड़ है, इतना बढ़िया पेड़ है, तुम वहीं जाकर रहो और पेड़ में भी सभी शाखाओं में नहीं रहना, सभी शाखा एक समान नहीं है, विशेष शाखा है, मैं तुमको बता देता हूं, वो शाखा है शिखान्वित, शिख का अर्थ होता है विशेष, सिर का शिखा, चोटी को हम लोग शिखा बोलते हैं, ब्राह्मण लोग प्रतिदिन संध्या वंदन के समय में नहाते समय में पूरी शिखा को खोल लेते हैं और नहाने के बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए शिखा बंधन करते हैं, शिखा बंधन करने के बाद तब फिर संध्या वंदन करते हैं, शिखा बंधन किए बिना संध्या वंदन नहीं होती, शिखा के बिना क्या सिंधा करेंगे, और आज शिखा की बात ही नहीं जानते कोई, क्योंकि चोटी कोई रखता ही नहीं है, शिखा के कल्चर ही समाप्त तो हो गया, संस्कृति ही समाप्त तो हो गया है, हाँ। तो पहले तो शिखा का महत्व था, और जैसे सन्यास लेते समय में कर्म सन्यास जब लेते हैं, शास्त्र विधि से सन्यास दीक्षा ली जाती है तो सबसे पहले शिखा छेदन होता है, तो शिखा छेदन हो गया तब जाकर वो कर्म सन्यासी हो गया है, अन्यथा कर्म सन्यास होता नहीं, बिना सिखी को कर्म सन्यास नहीं दिया जाता है। अब रही बात, शिखा रखने के अधिकार जो है तीन वर्ण को है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्ण को शिखा और सूत्र धारण का अधिकार है, और आजकल तो सबको अधिकार दे दिया है, सबको अधिकार दे दिया, अब शायद सबको अधिकार दे दिया इसलिए सिखी लोगों ने शिखा छोड़ दी है, समझ गए, न ब्राह्मण शिखा रखता है, न वैश्य रखता है, न क्षत्रिय रखता है, और जो नए नए जो पहले पहले शिखा रखने का अधिकार जिसको मिल गया और उसको यदि शिखा दिया तो इतना बड़ा रखता है, समझे कि नहीं, आजकल ये हो रहा है, मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूं, ये युग धर्म है, युग निर्माण होता है ना, आजकल एक संस्था युग निर्माण कह रहे हैं और वो सबको शिखा और सूत्र वितरण करते घूम रहे हैं ना, वो लोग शिखा सूत्र रखते हैं, अब ब्राह्मण शिखा सूत्र नहीं रखते, वे लोग अब शिखा सूत्र रखने लग गए है, जिसको अधिकार नहीं दिया गया था अब वे लोग सब शिखा सूत्र रखने लग गए, और जिसको रखने का अधिकार दिया था उन लोगों ने रखना छोड़ दिया, तो बोले क्यों नहीं रखते हो तुम लोग, बोले उन लोगों ने रख लिया है ना, आज हमारा काम वही करते हैं, जाओ ले जी, खत्म हो गई, तो सब सांकर्य हो गया, हाँ इसी को सांकर्य कहते, छंद साखी शिखान्वित, हे मन पक्षी तुम वेद रूपी वृक्ष में जाओ, उसमें भी उपनिषद रूपी शाखा में ही रहना, ध्यान देना, क्योंकि शंकराचार्य जी उपनिषद को प्राथमिकता देते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राथमिकता देते हैं, वेदांत को प्राथमिकता देते हैं, और वेदांत शब्द का परिभाषा की है शंकराचार्य जी ने, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उसको वेदांत कहते हैं जिसके बारे में उपनिषद प्रमाण है, और जिसके बारे में उपनिषद प्रमाण नहीं है उसको वेदांत नहीं कह सकते हाँ। तो उपनिषद वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, तो तुम उपनिषद रूपी शाखा में ही रहना, उससे इधर उधर जाने की चेष्टा नहीं करना हे मन पक्षी, क्योंकि वहीं रहोगे तो तुमको सभी फल वहां मिल जाएगा, सब कुछ तुमको सारे प्रयोजन वहीं मिलेगा, क्योंकि सभी द्विजों ने उसी शाखा का आश्रय लिया है, या द्विज, क्योंकि पक्षी भी द्विज है और ब्राह्मण भी द्विज है, ब्राह्मण का भी दो बार जन्म होता है, आप लोग कोई ब्राह्मण हो कि नहीं है? कितनी बार पैदा हुए हो ब्राह्मण? क्षत्रिय भी दो बार पैदा होता है और वैश्य भी दो बार पैदा होता है, इसीलिए उसको द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों को द्विज कहते हैं, और पक्षी भी दो बार पैदा होता है, एक बार मां के गर्भ से अंडे के रूप में पैदा होता है, दूसरे बार अंडे के गर्भ से पैदा होता है, तो पक्षी का नाम द्विज क्यों हुआ? क्योंकि दो बार पैदा होता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका भी दो बार जन्म होता है, एक मां के गर्भ से, दूसरा गायत्री के गर्भ से है, उपनयन संस्कार जिसको व्रतबंधा उपनयन संस्कार या जनेऊ बोलते हो खड़ी भाषा में है, हम बच्चे को जनेऊ करना है, जनेऊ देना है बोलते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ? उसका दूसरा जन्म कराना है, पहला जन्म तो प्राकृत होता है, इसलिए मनु महाराज ने कह दिया है जन्म न जायते शूद्र, ब्राह्मण का बेटा भी जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र ही होता है, क्षत्रिय का बेटा भी शूद्र ही होता है, वैश्य का बेटा भी शूद्र ही होगा हाँ। और जब तुम वैदिक विधि से उनका संस्कार करोगे तो मन महाराज ने कहा संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार के बिना उसको द्विज नहीं कहा जाता, संस्कार ये उसका द्वितीय जन्म है हाँ। मां के गर्भ से प्रथम जन्म, संस्कार वैदिक विधि से होने वाला जो संस्कार है वेद मंत्रों के माध्यम से, उसका द्विजत्व, ये द्वितीय जन्म होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है, और सारे द्विजों ने उसी शाखा का आश्रय लिया है, इसीलिए तू भी द्विज है, इसलिए और शाखा का आश्रय नहीं लेना हाँ। उसी शिखामणि हाँ, शिखान्वित उसका आश्रय ले, द्विजवर ही हाँ, द्विजो में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, द्विजवर ही संसेविते शाश्वते, उन्होंने हमेशा सेवन किया है उस शाखा का, और उसको सेवन करने वाले को ही शाश्वतता की प्राप्ति होती है, नित्य सुख नित्यता की प्राप्ति होगी, और सारी शाखाएं अनित्यता की ओर ले जाने वाली हैं, अन्य शाखाएं मीमांसा योग आदि का प्रतिपादन करने वाले हैं, वेद आयुर्वेद धनुर्वेद, वेद में अनेक शाखाएं हैं, कर्म मीमांसा ये अनेक शाखाएं हैं, वे शाखा अनित्यता की तरफ ही ले जाने वाली शाखाएं हैं, और ये जो शिखान्वित यानी उपनिषद रूपी जो शाखा है वो शाश्वती नित्यता की तरफ ले जाने वाली शाखा है, जो उपनिषद के आश्रय में रहकर अपने उपनिषद प्रतिपादित साधना का अभ्यास करेगा वो व्यक्ति ही शाश्वत सुख यानी ब्राह्मी सुख यानी कैवल्य मोक्ष विधेय मोक्ष भाव को प्राप्त करेगा, अब वो शाश्वत है, अन्यथा अन्य शाखाओं का आश्रय लेगा तो वो तो या तो कर्म में लगेगा या फिर उपासना में लगेगा। आजकल सुबह प्रातः काल हाँ 8:30 से 9:30 बजे तक गीता स्वाध्याय चलता है, 7वां अध्याय शंकरानंदी टीका के आधार पर स्वाध्याय चलता है। हाँ तो वहां इस श्लोक पर बड़ा सुंदर डिस्कशन हुआ है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ए वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भगवान ने कहा हे अर्जुन, मेरी एक माया नाम की शक्ति है जो मुझ देव में आश्रित होने के कारण उसको दैवी कहा। मुझ देव परमात्मा रूपी देव, स्वयं दीप्यते इति देव, अपने आप प्रकाशित होवे ऐसा जो परमात्मा, उस देवता के आश्रय में रहने वाली दैवी माया है। दुरत्य है, लेकिन वो दुरत्य है, साधारण व्यक्ति या साधारण प्रयत्न से उस माया को जीत नहीं सकते, हटा नहीं सकते कोई भी, दुरत्य है। फिर उसको कैसे हटाए महाराज, तो उन्होंने उपाय बता दी, माम ये वये प्रपद्यन्ते, मेरी प्रपत्ति जो करता है, मेरे आश्रय जो अवलंबन करता है, माम ये वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम एताम मायाम तरंती ते एताम मायाम तरंती। वे लोग फिर इस माया को आसान से जीत सकते हैं, सहज से इस माया से परे हो सकते हैं। अब वहां विचार किया कि वहां भगवान ने माम ए वये प्रपद्यन्ते करके अपने लिए जो माम कहा है ना, मेरे शरण में, वह सगुण ने कहा है कि निर्गुण ने कहा है, ये प्रश्न उठा। सगुण के शरण में जाने पर माया से तर सकते हैं कि निर्गुण के शरण में जाने पर, ये प्रश्न उठाया वहां। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, सगुण के शरण में जाओगे तो माया से आराम से बच सकते हो। तो शंकरानंद स्वामी जी कहते, क्या बात करते हो, विष पान करके कहीं अमृत मिल सकता है, अमर हो सकता है? सगुण रूपी गुणमयी माया से बचने के लिए, माया कैसी है फिर, गुणमयी है, गुणमयी माया से बचने के लिए सगुण की शरण में जाकर गुणमयी माया से बच सकते हो? बोलो, सगुण के शरण में जाकर गुणमयी माया से बच सकते है कोई? जिसके शरण में गया वहीं पहले से गुण पड़ा है, गुण माने माया तो वहीं है, विद्यमान है, तो फिर तुम गुणमयी माया से कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते। बोले फिर निर्गुण की उपासना करें तो माया से बच सकते हैं कि नहीं? बोले नहीं, निर्गुण की यदि उपासना करोगे तो माया से नहीं बच सकते, क्योंकि फिर वह जो माया कहां रहेगी, बोलो, उपासक में रहेगी। सगुण की उपासना करोगे तो उपासक उपास्य में भी रहेगी माया, उपासक में दोनों जगह रह गई तो माया से तरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। निर्गुण की उपासना करोगे तो उपास्य में तो माया नहीं रहेगी, लेकिन उपासक में माया है, क्योंकि उपासना भेदमूलक होता है, भेद माया का कार्य है। ले जी, उपासना भेदमूलक होता है, द्वैतमूलक होता है, द्वैत माया का कार्य है। तो फिर तुम माया से कैसे बच सकते हो? फिर क्या करना चाहिए माया से बचने के लिए? तो निर्गुण के उपासना से भी बच नहीं सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? शंकराचार्य जी कहते हैं, उपासना की बात छोड़ दो, शरण की बात भी छोड़ दो, फिर क्या करें? बोले अनुसंधान करो। ये प्रपद्य का अर्थ किया शंकरानंद स्वामी जी ने, प्रपद्यते यानी अनुसंधत्ते, निर्गुण का, अपना और माया का, तीनों का अनुसंधान करो कि तीनों में कौन सा सत्य है कौन सा झूठा है। ये अनुसंधान करोगे, चिंतन करोगे, जो कि विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, तो वह स्वरूप अनुसंधानात्मिका भक्ति, परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान और माया के स्वरूप का अनुसंधान करोगे तब तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप लक्ष्यार्थ में तो एक है। माया का स्वरूप तो माया तो है ही नहीं, ले जब अनुसंधान करोगे तो माया सिद्ध ही नहीं होगी। है दिख रहा है आकाश में नीलिमा, लेकिन उस नीले रंग का यदि अनुसंधान करके खोजने जाओ आकाश में नीलिमा है ही नहीं। इसी तरह माया दिख रही है, कब तक दिखेगी? अनुसंधान नहीं करोगे तब तक माया है ये बुद्धि होगी, अनुसंधान नहीं करोगे तब तक आकाश नीला है ये बुद्धि होगी, अनुसंधान करोगे तब क्या होगा? आकाश नीला कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आकाश निर्गुण है, तो नीला है ही नहीं। इसी तरह माया है ही नहीं, जो स्वरूप से नहीं है फिर भी भासे उसी का नाम तो माया। स्वरूप से नहीं, स्वयं में कुछ नहीं और फिर भी भासित होवे, दूसरे के आश्रय में रहकर भासित होवे, परसत्ता का भासमानत्वम माया तुम। ये परमात्मा की सत्ता में बिना हुए ही भासमान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? माया। स्वसत्ता भासमानकम, अपने ही सत्ता में जो भासित होए उसका नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा को किसी अन्य की सत्ता की आवश्यकता नहीं है, अपने ही सत्ता में सत्तावान हुआ है, इसलिए वह सत्य है, परमात्मा है, पर सत्ता में भासमान है इसलिए माया है। अपनी सत्ता में वो है ही नहीं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता में भाषित हो रही है। और तरना किससे? तुम्हें पर सत्ता में भाषित जो माया है उसी से तरना है, निकलना है, बचना है। और निर्गुण का अनुसंधान करोगे तभी तुम माया से तर सकते हो, अन्यथा न सगुण के आश्रय में रहकर माया से बच सकते हो, न सगुण की उपासना से बच सकते हो, न निर्गुण की उपासना से, क्योंकि भेद बुद्धि यदि है उपासना में तो भेद बुद्धि ही माया का कार्य है। इसका मतलब माया कार्य से ही माया का अस्तित्व सिद्ध होता है, भेद बुद्धि है तो माया है, बस खत्म हो गई बात। तो यहां बड़ा सुंदर ये प्रसंग को वेदांत परक बता दिया, क्योंकि शाश्वत ही तुम उपनिषद रूपी वेद रूपी वृक्ष के उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या के शाखा में रहोगे तो हे द्विजवरा मन भी द्विज है, समझे नहीं? मन को भी जब यह पैदा हुआ अस्तित्व में आया तो संस्कारहीन था मन, मन को भी संस्कार देना पड़ता है, संस्कारित करना पड़ता है। मन को जब आप अच्छे संस्कारों से संस्कारित करोगे तभी वह मन तुम्हारा मित्र हो सकता है। यदि तुम मन को अच्छे संस्कारों से संस्कारित नहीं करोगे तो मन तुम्हारा घातक बन जाएगा, इसलिए अच्छे संस्कारों से संस्कारित मन को यहां द्विज कहा। मन भी द्विज है और पक्षी भी द्विज है और ब्राह्मण आदि वैश्य वो भी क्षत्रिय भी द्विज है, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार इन्हीं को है। आज विवाद नहीं करना, फिर अपने कहा हाँ कोई फिर विवाद करोगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही वेद पढ़ने के अधिकार है, शूद्र को क्यों नहीं अधिकार है? तुम कहोगे कानून ने अधिकार दे दिया, तो कहां पढ़ लिया तुमने? कानून ने तो दिया ना अधिकार, कहां पढ़ रहे हो? फिर भी तुम ऐसे के वैसे ही बैठे हो, कानूनी अधिकार दे दिया, झगड़ा किया, कानूनी अधिकार दे दिया और पढ़ने गुरुकुल में तुम आते नहीं हो। तो झगड़ा करने के लिए अधिकार खोजा है तुमने, तो भाई दे दिया ना, पढ़ो वेद। बोले क्या ये वेद पढ़ से क्या फायदा होगा? ले फिर क्यों झगड़ा किया था? तुम अधिकार खोज रहे थे और कानून ने अधिकार दे दिया, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, कानून ने दे दिया, फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? आओ पढ़ने। बोले वेद पढ़ के क्या मिलेगा? फिर झगड़ा क्यों किया था? तो इसका मतलब अधिकार केवल झगड़ा करने का है, पढ़ने का नहीं है। यही निषिद्ध हुआ। छंदस्साखि शिखान वितेर द्विजवरई संशे विते शाश्वती सौख्यापादिनी। हाँ, तुम उपनिषद विद्या का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये मन वहां तुमको जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा ब्रह्म विद्या से, सौख्यापादिनी, सुख का आपादन तो ब्रह्म विद्या में ही है भाई, परा विद्या में ही है, अपरा विद्या में नहीं है। अन्य विद्या में वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सौख्यापादिनी खेद भेदिनी, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, खेद भेदिनी, अनेक जन्मों में बार बार पैदा होते रहे, मरते रहे, कर्म करते रहे, कर्म फल भोगते रहे, ये क्रम अनादिकाल से चलता आया है और कब तक चलते का कोई ठिकाना नहीं है। तो संसार भोग और संसार के कर्मों से जो जीव थका हुआ है, उस थकान को तुम नाश करना चाहते हो, तो वो क्या है, खेद भेदिनी, कितना सुंदर शब्द है। तुम्हारी संसार यात्रा को मिटाने वाली तो वही है। संसार यात्रा करते करते जो थके हो यदि तुम, तो और थके नहीं हो तो दौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसार यात्रा से तुम थके हो तो उस थकान को नाश करने वाली विद्या तो यही उपनिषद विद्या में ही है। हे मन, तो अनादिकाल से विषय भोगते भोगते थक गया है, संसार यात्रा करते करते थक गया है, जन्मते और मरते मरते थक गया है। अब तो जन्मना न पड़े, अब तो मरना न पड़े, अब तो ये विषयों को भोगना न पड़े तो अच्छा था, यदि तू मानता है, हाँ? बार बार बूढ़े होते रहे, मरते रहे, तो अब तो फिर दोबारे कभी भी बूढ़ा न हो, ये इच्छा है कि नहीं तुम्हारे मन में? तो फिर उस खेद को नाश करने की क्षमता इसी में है। खेद भेदिनी, सौख्यापादिनी, खेद भेदिनी, सुधा सारे फलहीर दीप्यते, सुधा सारेर फलेर दीप्यते, अमृत अमर अमृत, कभी जन्मना न पड़े, कभी मरना न पड़े, ऐसे रसों से भरा हुआ मोक्ष रूपी फल से युक्त है। देख लो कौन से फल से है, मोक्ष रूपी, कैसा वो मोक्ष, सुधा सारे, क्या बढ़िया रस है उसमें है? पान करते समय भी पंडित लोग जब भागवत के मंगलाचरण करते हैं ना, सिर हिला हिला के, हाँ, पिबत भागवतम रसाल मुहुरहो दसिका भूवि भावुका, भागवत कैसा फल है, बोले रसालयम पिबतम भागवतम कीदृशम भागवतम रसालयम, गुठली नहीं है, रस ही रस है, है? कहते हैं कि नहीं, ना छिलका है ना गुठली है, और पूरा का पूरा रस से भरा हुआ शास्त्र, भक्ति रस से। लेकिन ये हे मन रूपी पक्षी, जिस पेड़ में रहने के लिए मैं तुझे कह रहा हूं, पेड़ में भी विशेष शाखा में टहनी में रहना, वो टहनी की विशेषता यह है कि उसमें इतना बढ़िया फल लगने वाला है, जिसमें सुधा सारे फल दीप्यते, सुधा अमृत रूपी फल से युक्त है। चेता पक्षी शिखा मणे, ऐसा वृक्ष होता हुआ, ऐसी शाखा टहनी होते हुए भी तू इधर उधर भटक रहा है, कैसा मूर्ख है भाई। त्यज वृथा संचार मन्नेरलम, अन्य ही संसार में उसको छोड़कर अन्यों के जो विकल्प है, एक प्रकार से शंकराचार्य जी ये भी कहना चाह रहे हैं, तो कर्म मीमांसा की तरफ दौड़ता है तो दौड़ना नहीं, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। यज्ञ करो जीवन भर, इंद्राय स्वाहिदम इंद्राय नमः करते रहो, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की सुधा अमृत पान कर तो लोगे, लेकिन पुण्य क्षय के बाद फिर यहां फेंक देंगे। तो ऐसे वृक्षों में नहीं जाना तू, हाँ? उधर उधर में मत बट करना। सुधा सा त्यज वृथा संचार मन्नीरलम, अन्य की तरफ तुम नहीं भटकना हो, कहीं नहीं जाना, अलम बंद करो इधर उधर भटकना। मन भटकता रहता है। प्रेमपुरी आश्रम में बढ़िया उपनिषद का स्वाध्याय और प्रवचन चलता है, ब्रह्म विद्या है। सुनते सुनते अमेरिका जाने की इच्छा हुई। अरे भाई क्या मिलेगा वहां जाकर, बोलो क्या मिला अमेरिका से जाकर। सुनते सुनते कहां जा रहे हो, तो बोले मुलुक जाना है। और क्या मिला तुमको मुलुक जाकर, वही कौन सा वृक्ष, संसार वृक्ष। और संसार वृक्ष तो टाट के फेंकने का वृक्ष है, तुम उसी को और सिंचन करने जा रहे हो इधर उधर। उससे अभी तक क्या मिला तुमको, पिछले जन्म में भी तो मुलुक गए थे, पिछले जन्म में भी तो अपने जन्म स्थल गए थे, पिछले जन्म में भी कर्म किया था। शंकराचार्य जी अपने मां को अंत में समझाते हैं, अंत में नहीं शुरू में, जब उनको संन्यास लेने की इच्छा हुई, कहा मां को, मां मेरी संन्यास लेने की इच्छा है, आप अनुमति दे दो। मां रोने लग गई, तू एक ही बेटा है, मेरा तो और कोई आश्रय नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो पहले मर चुके हैं, अब मेरे लिए तुम ही आश्रय हो, तुम भी सन्यासी बनकर जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूंगी। अनुमति नहीं दिया। तो फिर समझाना लगे, हे मां ये किस मोह में पड़ी हो तुम, अभी मुझे तुम पुत्र कह रही हो, ऐसे पुत्र तुमने कितने जन्म में कितने पुत्रों को जन्मा दिया, क्या मिला हा? क्या मिला तुमको, कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधूर भुंजी। अभी स्वप्न देख रही हो कि मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर शादी करेगा, बहू आएगी है। क्या इससे पहले जन्म में बच्चा पैदा नहीं किया था, बेटा नहीं था, उससे पहले जन्म तुम्हारा बेटा कुंवारा ही रह गया था क्या, उस समय तो शादी हुई थी, बहू आई थी। कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधूर भुंजी, कोनु ते कोच ता, वे पुत्र कहां गए, वे बहुएं कहां गई, वो नाती पोते तुम्हारे कहां गए, क्या मिला तुमको, वो ढाक के दो पात। अब अभी तुम पुत्र के मुंह में फंसी हो, फिर ये कल्पना करती हो कि बेटा बड़ा होगा, कल्पना करती होगी बहू आएगी, फिर नाती होंगे पोते होंगे, कल्पना करोगी, फिर करते करते मर जाओगी, फिर क्या होगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर बेटा होगा, फिर तुम कल्पना। अरे भाई कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधूर भुंजी, कोनु ते कोचता कोवा वयम, ये सब के सब खलु पांत संगम ही देहिना, ये तो पनघट के में इकट्ठे हुए ये सब प्यासु पानी के प्यासे लोग हैं, पनघट के जमघट हैं, ये पुत्र बहू नाती पोते ये क्या है, पनघट के जमघट है ये है? जिसकी अपने घड़ा भर गया तो वो घड़ा उठा के चल पड़ता है, जब तक घड़ा नहीं उठता तब तक बहन जी केम छो सू चाले छे हैं? बड़ी मीठी मीठी संवाद, आओ जो मारे घेरे आओ जो हाँ? सारी बात कितनी मीठी मीठी संवाद, ऐसा लगता है कि मेरे परम हितैषी यही है, इसके अलावा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। लेकिन जहां उसका घड़ा भर गया तुरंत उसको कह गया, अच्छा बहन आओ जो हाँ? वो कह के नहीं उबारो, तमें उबारो मारा घड़ा भरवा दो पची साथे जाइए, बोले नहीं मारो तो मोड़ो थसे। क्या बात करते हो तुम, मने मोड़ो थसे, अभी अभी कितने प्रेम की बात करती थी, घड़ा भर गया तो मने तो पची मोड़ो थसे, ले जी तुरंत ही। ये संसार का संबंध क्या है, पनघट के एक घड़े भरने तक के संबंध है, जिसका घड़ा भर गया चल पड़े सब, कोई किसी का नहीं है। मां को समझाया फिर भी नहीं मानी, तब फिर नाटक करना पड़ा शंकराचार्य जी को। वो कपड़ा धोती रही, वो नहाने के लिए चले गए तो एक गोही को तैयार किया और उसको पकड़ता हुआ दिखा दिया उन्होंने, वो तो शंकरा अवतार थे, शिवा अवतार थे शंकराचार्य, तो तो गोरी उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और रोने लगे जोर जोर से, मां बचाओ मां बचाओ, आ जा तू मुझे बचाने के लिए आ जा, ये खाए जा रहा है। कौन आता है? आएगा कोई? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवती, याज्ञवल्क गार्गी को संवाद में ये मंत्र आता है उपनिषद में। कौन किसके लिए है? सब अपने स्वार्थ में। बेटा जब मरने लगा बुलाया तो मां की हिम्मत नहीं हुई कि कूद पड़े है? नहीं हुई। तब वहीं कहा कि मां यदि तू मुझे नहीं बचाती है तो ये तो खा रहा है, तो फिर भी तू संन्यास लेने की आज्ञा दे दे, शायद संन्यास के नाम तेरे संकल्प होते ही ये मगरमच्छ छोड़ देवे। तो कहते हैं नहीं मामा से काना मामा अच्छा, कहते हैं कि नहीं, मामा ही नहीं है उससे अच्छा तो काना भी हो तो कोई बात नहीं है, मामा कहने के लिए तो होगा ना, नहीं मामे से काने मामा अच्छा है। इसलिए बेटा मर जाने से तो सन्यासी हो जाए वो अच्छा। मां ने ये सोचा अच्छा बेटा तेरी इच्छा वही है तो तेरी इच्छा पूरा हो, इतना कहना था तो मगरमच्छ भाग गया है। शंकराचार्य आ गए और प्रणाम किया और चल पड़े वहीं से, बस चरण स्पर्श किया चल पड़े सीधा नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में आए और गोविंद पादाचार्य के सान्निध्य में रहकर संन्यास दीक्षा लिया और ये कह दिया चलते समय, मां तुम्हें जब भी हृदय से मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो शंकराचार्य जी सब कुछ दिग्विजय करने के बाद केदारनाथ में पहुंचकर केदार मंदिर का जीर्णोद्धार करके जब वही साधना करके अंतिम में प्रारब्ध समाप्ति के साथ देह परित्याग करने के लिए केदार पहुंच चुके थे, उसी समय में मां का प्रारब्ध समाप्त हो गया शरीर का। मां ने स्मरण किया इस समय बेटा कहां होगा, किस अवस्था में होगा। उसने कहा था अब मैं तो मरूंगी, एक बार वो आ जाता किस हालत में होगा कैसा होगा, इतना स्मरण करना था। शंकराचार्य जी को भान हुआ, मां ने स्मरण किया, केदारनाथ से सीधा केरल कालड़ी शंकराचार्य जी पहुंच गए और कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो सगुण साकार परमात्मा की बात करते हैं, दर्शन करने की इच्छा है, अभी तक दर्शन हुआ नहीं बेटा, हाँ तुम करा दो तो अच्छी बात है, हमने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, हाँ भगवान का दर्शन करा देते हो भक्तों को। तो कहा कि ठीक है बेटो, भगवान शंकराचार्य जी ने मां को सगुण साकार का दर्शन करा दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि मां ये सगुण साकार के दर्शन से तुम्हारा प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि माया रूप का दर्शन है सगुण साकार, तो क्योंकि शब्द ही प्रयोग हुआ है सौ गुण, गुण तो परमात्मा में रहता ही नहीं है, माया में रहता है, माया से युक्त हुआ हुआ गुणवान हुआ तो सगुण, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। निर्गुण निराकार विशुद्ध तत्व का आप चिंतन करो, उसका अपरोक्ष करो, फिर तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके कर्म संन्यास तो नहीं कराया मां को, ज्ञान संन्यास करा दिया उनको, मां को ऐसा बोध हुआ कि हां ब्रह्म एव सत्यम, ये बोध हुआ। इतने में मां का शरीर पूरा हो गया, शंकराचार्य चल पड़े, फिर केदारनाथ में गए, वहां शरीर पूरा किया, वहीं उनकी समाधि, अभी मंदाकिनी ने सब समाधि बगा दिया तोड़ दिया, रिपोर्ट में ये आ रहा है। केवल मंदिर का गर्भगृह केदारेश्वर का बचा है, बाकी सब टूट गया है। अब वो निर्माण के अभियान तो चलाना ही चाहिए, पुनः चला रहे हैं। हाँ तो चेता पक्षी शिखा मणे तेजवृथा संचार मन्नीरलम नित्यम शंकर पाद पद्म युगली नीडे विहारम कुरु। हे चेता पक्षी शिखा मणे, भगवान उस वेद रूपी वृक्ष में, उपनिषद रूपी शाखा में भगवान शंकर के पाद पद्म युगली रूपी नीड बना ले, घोंसला बनाकर रहना। घोंसला किसका बनाना? पक्षी तो घोंसले में रहता है, पेड़ में घोंसला बनाना है तो वेद रूपी पेड़ में, उपनिषद रूपी शाखा में भगवान शिव के चरण युगल रूपी तिनके को रखकर तो घोंसला बनाकर उसी में बैठो। तब उस पेड़ ऐसा पेड़ है कि उसमें फल भी लगेंगे, पत्ते भी लगेंगे, छाया भी होगी, सब कुछ उसी वृक्ष से प्राप्त होगा। ऐसा तुमको बड़ा आनंद आएगा, तुम इधर उधर नहीं भटकना भैया। मलबार हिल में कहीं फ्लैट मिल गया तो शिव के चरण को छोड़कर उस फ्लैट में मस्त नहीं रह देना। शिव का चरण ही तुम्हारा नीड है। नीड का अर्थ आश्रय स्थल, घोसला। मन को समझा रहे हैं शिव चरण के घोसला को छोड़कर इधर उधर मत भागो। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भैया, शायद ये श्रृंखला कल पूरा होने वाला 28 है ना, ये शिवानंद लहरी की जो श्रृंखला है 16 तारीख से शुरू हुई थी, कल से हम पूर्णाहुति का हैट्रिक करने वाले हैं। हाँ जीवन भाई, पूर्णाहुति के हैट्रिक पता चला कैसे हो गए हैट्रिक? कल शाम को शिवानंद लहरी की पूर्णाहुति, परसों सुबह गीता स्वाध्याय की पूर्णाहुति, नरसों सुबह श्रुति सार समुद्धरण की पूर्णाहुति, तीन दिन में तीन पूर्णाहुति होगी। ले तो हैट्रिक हुआ कि नहीं बोलो, पूर्णाहुति का हैट्रिक। तो ये शिवानंद लहरी का कल अंतिम दिन है और जो भाव होगा कल करेंगे, फिर बचे हुए श्लोकों का फिर अगले साल 2014 यही जून महीना 16 तारीख से 28 तारीख तक बचे हुए श्लोकों की व्याख्या, क्योंकि पिछले बार शुरू किया था, पिछले बार 22 श्लोक तक की व्याख्या हुई थी, फिर 22 से 23 श्लोक से इस बार शुरू किया है, 100 श्लोक है इसमें, 23 श्लोक से इस बार शुरू किया था, अब कल तक कितने श्लोक होते हैं देखेंगे और बचे हुए श्लोकों को फिर अगले बार फिर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति त्रिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ